द प्रिंट पॉड के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं चितवन और मैं पढ़ रही हूं मौसमी दास गुप्ता की रिपोर्ट। सब्सिडी कम करें, सरकारी सेवाओं का शुल्क बढ़ाएं, राज्यों को घाटों को कम करने के लिए केंद्र ने दिए सुझाव। कई राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं है और कर्ज का बोझ उन्हें पूंजीगत संपत्ति पर खर्च करने से रोक रहा है। इस बात से भी कोई अनजान नहीं है, लेकिन अब इनसे केंद्र सरकार को चेतावनी जारी करने और डिफॉल्ट की स्थिति को रोकने के लिए राज्यों के खर्च में भौतिक बदलाव का सुझाव देने के लिए मजबूर कर दिया है। केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने 15 से 17 जून के बीच धर्मशाला में राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक में राज्यों को अपने वित्त में सुधार करने में मदद करने के लिए कई सुझाव दिए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। सुझावों में योजनाओं और स्वायत्त निकायों का सुव्यवस्थीकरण और अकुशल सब्सिडी को कम करने के उपाय शामिल थे। राज्यों के राजस्व घाटे को कम करने के लिए सोमनाथन ने सुझाए कुछ संभावित उपायों में संपत्ति करों में आवधिक वृद्धि, पानी जैसी विभिन्न सरकारी सेवाओं पर नियमित रूप में शुल्क बढ़ाना और समय समय पर शराब पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना शामिल है। सिफारिशें एक प्रोजेक्शन का हिस्सा थी। इसकी एक प्रति द प्रिंट के पास है। 2012 में 15वें वित्त आयोग ने भी मुद्रास्फीति और विकास के अनुरूप नगर पालिकाओं को संपत्ति कर दरों में आवधिक वृद्धि करने पर जोर दिया था। ये सुझाव भारतीय रिजर्व बैंक के पिछले महीने एक विस्तृत अध्ययन जारी करने के बाद आए हैं, जिसमें उन्होंने कम से कम ऐसे 10 राज्यों को रेखांकित किया है जिन्होंने अपने स्वयं के कर राजस्व में मंदी, प्रतिबद्ध व्यय में बढ़ती हिस्सेदारी और बढ़ते सब्सिडी बोझ को देखा है। उनका खर्च पहले से ही कोविड-19 की वजह से बढ़ गया था। अध्ययन के अनुसार बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की हालत चिंताजनक है। इनमें से अधिकांश राज्यों ने 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अपने ऋण स्तर को पार कर लिया है। प्रोजेंशंस में सोमनाथ ने कहा कि राज्यों को केंद्र का अनुसरण करना चाहिए और पिछले महीने उनके द्वारा हाल ही में किए गए कुछ फैसलों को लागू करना चाहिए। उन्होंने विस्तृत समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा 231 स्वायत्त निकायों को लेने का उदाहरण दिया। मई 2022 में समीक्षा के बाद अन्य बातों के अलावा विलय, क्लोजर और विक्टन के जरिए 112 स्वायत्त निकायों को कम करने का निर्णय लिया गया था। सोमनाथन ने कहा कि सुव्यवस्थीकरण न केवल अनुपातिक प्रशासनिक लागत में कटौती करेगा, बल्कि संगठनों के बीच सिलोस को भी तोड़ देगा, जो जनता के लिए बेहतर परिणामों और सेवाओं के साथ सहयोग करने वाले हैं। उन्होंने कहा, राज्य इस तरह का कदम उठा सकते हैं और इसमें मुख्य सचिवों का नेतृत्व महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि सहयोग करने वाले संगठनों के बीच सिलोस को तोड़ने से बेहतर परिणाम और जनता की सेवा हो सकती है। इसी तरह वित्त सचिव ने सुझाव दिया कि राज्य अपनी योजनाओं की युक्तिसंगत तरीके से कम करके प्रशासनिक लागत घटाकर उन्हें बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि 2016 से 130 केंद्र प्रायोजित योजनाएं में से 60 को बड़े प्रोजेक्ट के साथ मिला दिया गया और 5 को बंद कर दिया गया है। इसने CSS की संख्या को घटाकर 65 कर दिया। उदाहरण के तौर पर पशुपालन विभाग की 10 योजनाओं को मिलाकर एक राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि राज्य इस फंड का लचीले ढंग से इस्तेमाल कर सकें। एक CSS योजना में आमतौर पर केंद्र और राज्य के बीच 6:4 के अनुपात में खर्च साझा किया जाता है। 2021 में 15वें वित्त आयोग ने भी धीरे धीरे उन CSS और उनके उप घटकों के लिए फंडिंग को रोकने के लिए सिफारिश की थी, जो या तो अपनी उपयोगिता खो चुके हैं या फिर जिनके पास राष्ट्र कार्यक्रम के अनुरूप बजट ना के बराबर है। सोमनाथन ने इसे एक बड़ा कदम बताते हुए सुझाव दिया कि राज्यों के राजस्व घाटे को कम करने के विकल्पों में से एक, जब सरकार का कुल राजस्व व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो, अकुशल सब्सिडी को कम करना है। अकुशल सब्सिडी का ऐसी चीज़ों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बेकार खपत को प्रोत्साहित करती हैं। इसमें बेनिफिशरी से कोई लागत वसूली नहीं जा सकती और इसके दुष्प्रभावों के तौर पर हम प्रदूषण या अत्यधिक पानी की खपत को देख सकते हैं। वित्त सचिव ने अपनी प्रोजेक्शन में कहा, ऐसी सब्सिडी में कमी राज्यों की दीर्घकालिक वित्तीय हालत की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। केंद्र ने अकुशल सब्सिडी के उदाहरण के रूप में किसानों को मुफ्त बिना मीटर बिजली देने की ओर संकेत किया। इसकी वजह से वित्तीय नुकसान और ओवर ड्यूज के साथ साथ बिजली का दुरुपयोग, चोरी और कृषि के लिए बेतहाशा पानी का इस्तेमाल किया जाता है। समाधान के तौर पर वित्त सचिव ने सुझाव दिया कि भले ही रियायतें दी गई हों, लेकिन मीटरिंग एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही प्रीपेड मीटरिंग भी एक और महत्वपूर्ण कदम है, जिसके लिए ऊर्जा मंत्रालय वित्तीय सहायता देता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की हाल ही में राज्यों के सभी घरों में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए आलोचना की गई, क्योंकि इससे सिस्टम में अक्षमता पैदा होगी और राज्य की वित्तीय संकट में इजाफा होगा। प्रोजेक्शन में वित्त को विस्तार से देखा गया और कुछ राज्यों में कर्ज में चिंताजनक वृद्धि के रेखांकित किया गया। उदाहरण के लिए 2015 और 2020 के बीच बकाया देनदारियों की वार्षिक दर, ऑफ बजट उधार और बिजली क्षेत्र की बकाया राशि को छोड़कर तेलंगाना में सबसे अधिक थी। इसके बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु का नंबर है। 2019 से 2020 में राज्यों में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में बकाया देनदारियां नागालैंड के लिए सबसे अधिक 47% थी, जबकि अरुणाचल प्रदेश और पंजाब में इसका प्रतिशत 43 था। कुछ 21 राज्यों के लिए GSDP या राज्यों की आय के लिए बकाया देनदारियां 2019-20 में 25% से अधिक थी। चूंकि राज्य के राजस्व का 90% राजस्व व्यय जैसे वेतन, पेंशन, मुफ्त में सब्सिडी के रूप में खर्च किया जा रहा है, ये राज्यों को पूंजी निर्माण पर खर्च करने से रोक रहा है। इसका विकास पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने 2015 से 2020 के बीच पूंजीगत व्यय पर अपने कुल बजट आउटले का केवल 10% तक ही खर्च किया था। इसकी तुलना उनके कुल खर्च के लगभग 18% पर पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र में परिव्यय से की गई। इनसे बेहतर स्थिति में उड़ीसा अपने कुल बजट परिव्यय का 21.2%, उत्तर प्रदेश 18.5%, बिहार 18% और गुजरात और झारखंड 17.8% पूंजीगत व्यय पर खर्च करता है। द प्रिंट पॉड का ये अंक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे।